नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सक्रिय शासन व्यवस्था और नीतियों का समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रगति मंच की परिकल्पना की थी। उन्होंने कहा कि प्रगति का उद्देश्य बुनियादी सुविधाओं की महत्वपूर्ण परियोजनाओं के रास्ते में आने वाली दिक्कतों को तेजी से दूर करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय बढ़ाना है। आज नई दिल्ली में प्रगति की 50वीं बैठक के बारे में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री सोमनाथन ने कहा कि ये प्रणाली पिछले 10 वर्षों से लागू है। उन्होंने कहा कि प्रगति प्रणाली परियोजनाओं पर निगरानी रखने, नागरिकों की शिकायतों का समाधान करने और योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करने का प्रौद्योगिकी आधारित तंत्र है, जिसमें केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों का सक्रिय सहयोग रहता है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों की आय बढ़ाना केंद्र सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। श्री चौहान ने नासिक में बताया कि किसानों के कल्याण के लिए कई योजनाएं लाई गई हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए सभी आवश्यक प्रयास जारी रहेंगे।
किसानों के लिए एक नहीं अनेकों मौके मिलेंगे। हमारा लक्ष्य है, अभी हमारे किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया है, तो एक उत्पादन बढ़े और किसानों की आय भी तेजी से बढ़े, हमारा देश और तेज गति से आगे बढ़े और मेरे किसान, गांव के गरीब भाई बहन, मेरी लाडली दीदियां हैं, वो और समृद्ध हो।
केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं से 2,58,000 करोड़ रुपए का उत्पादन होने और प्रत्यक्ष रूप से लगभग 34,000 नौकरियां सृजित होने की आशा है। इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रमुख सुधारों को लागू करना और कार्यान्वयन में तेजी लाना मोदी सरकार की पहचान है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत को आतंकवाद से स्वयं की रक्षा करने का अधिकार है और भारत ये किस प्रकार करता है कोई और तय नहीं कर सकता। चेन्नई में आईआईटी मद्रास टेक्नो एंटरटेनमेंट उत्सव शास्त्र 2026 के उद्घाटन अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए जो भी आवश्यक होगा वो करेगा। विदेश मंत्री ने देश की पड़ोस नीति का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत को शत्रुतापूर्ण पड़ोसियों से होने वाले आतंकवाद से स्वयं की रक्षा करने का अधिकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद पुष्प प्रदर्शनी की सराहना करते हुए कहा है कि ये रचनात्मकता, सतत विकास और सामुदायिक भागीदारी को एक साथ लाने में उल्लेखनीय भूमिका निभा रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये आयोजन शहर की जीवंत भावना और प्रकृति के प्रति प्रेम को दर्शाता है। 14वीं अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय पुष्प प्रदर्शनी कल शुरू हुई, ये 22 जनवरी तक चलेगी। प्रधानमंत्री मोदी कल दिल्ली के राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में भगवान बुद्ध से संबंधित पवित्र पिपरहवा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह प्रदर्शनी भगवान बुद्ध के महान विचारों को और अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए उनकी सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। भारतीय जनता पार्टी ने आज आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई है। नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की राजनीति के कारण उनका घुसपैठियों के प्रति नरम रवैया है। उन्होंने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR एक कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन ममता बनर्जी इसका विरोध कर रही हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में घने कोहरे के कारण कई रेलगाड़ियों का संचालन बाधित हुआ है। रेल विभाग के अनुसार लगभग 31 रेलगाड़ियां 2 घंटे की अधिक देरी से चल रही हैं। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ओडिशा, राजस्थान और चंडीगढ़ में घने कोहरे का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3 दिनों तक बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। 45 वर्षीय वीनस विलियम्स को ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस प्रतियोगिता के मेन ड्रॉ में वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है। ये प्रतियोगिता 18 जनवरी से शुरू होगी। वीनस इस प्रतियोगिता में खेलने वाली सबसे उम्र दराज महिला खिलाड़ी बनेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।